तो आज का जो अभी का सत्र है वो यही इस टॉपिक पर आधारित है, और अभी हम चलेंगे सीधा आबू राज से नई दिल्ली की ओर। चले नई दिल्ली की ओर, ताली बजाइए। हम आप ये समझिए कि हम सभी एक बहुत बड़ा एयरबस में बैठे हैं, वैसे भी लग रहा है सब कुर्सी नशीन बन गए। अच्छे से बेल्ट टाइट कर लीजिए, फास्टन योर सीट बेल्ट, और चलते हैं उड़ के नई दिल्ली की ओर, और सीधा उतरते हैं कहां पर? नए पार्लियामेंट में, पुराने वाला नहीं, नए वाले पार्लियामेंट में। और हम सभी पार्लियामेंट लोकसभा के सदस्य हैं, और इस पार्लियामेंट में आज हम मौजूद हैं और बहुत सुंदर बिल पास करने वाले हैं, और उस बिल का नाम है आर्ट ऑफ हार्मनी फॉर मेलोडियस फैमिली लाइफस्टाइल। आर्ट में ए बड़ा लिखा है, ए डॉट आर डॉट टी डॉट। ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, आर स्टैंड्स फॉर रियलाइजेशन, एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इन तीनों के आधार से परिवार के मधुर जीवन शैली के लिए सद्भावना की कला को हम कैसे अपनाएं और इसको कैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में धारण करें, इस पर चर्चा करेंगे, और ये बिल पास करके ही रहेंगे आज। सब राजी? सब राजी तो ताली बजाइए। और हम इस पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन बैठने वाले हैं, कौन स्पीकर है, कौन डिप्टी स्पीकर है, उसका भी हम परिचय देना चाह रहे हैं। आदरणीय हमारे रिस्पेक्टेड स्पीकर आज के पार्लियामेंट में रहेंगे, रिस्पेक्टेड चंद्रिका दीदी जी, उनका हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, परंतु वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच मौजूद होंगे। साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट रिस्पेक्टेड दयाल भाई जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं आप अपने सीट धारण करें, इसके लिए मैं दयाल भाई जी को रिक्वेस्ट करती हूँ। ताली बजा करके हमारे डिप्टी स्पीकर को मंच पर आमंत्रित करते हैं, ताली बजाते जाइए। साथ साथ जो हमारे आर्ट एंड कल्चर कैबिनेट मिनिस्टर है उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर, और वो है हमारे आदरणीय सतीश भाई जी। सतीश भाई जी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आज हमारे सामने मौजूद होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर बीके सतीश जी का हम बहुत बहुत दिल से करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। आप सीट पर विराजित हो जाएं। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर स्टेट मिनिस्टर के रूप में हमारे बीच में बीके मनोज खुशनुमा जी भी पधारे हैं। आप का भी दिल से हम स्वागत करते हैं करतल ध्वनि के साथ। और साथ साथ फैमिली हेल्थ कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में बीके राधा दीदी है। राधा दीदी अगर आ गए हैं कैबिनेट मिनिस्टर, फैमिली हेल्थ कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आप इस पद पर मौजूद है आज, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और फैमिली हेल्थ स्टेट मिनिस्टर के रूप में हमारे बीच में है बीके पारुल बैन, आपका भी बहुत बहुत दिल से इस पार्लियामेंट के बीच में स्वागत करते। ताली बजाइए। पार्लियामेंट के अंदर बहुत जोश और होश होते हैं, जोश है लेकिन होश के साथ वो दिखाएंगे आप ताली बजा करके। और साथ ही साथ हमारे जो बिल पास करने के लिए हमारे मिनिस्टर सब प्रेजेंट करेंगे, परंतु एमपीज भी है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के हैं, और हमारे बीच में ग्लोबल हार्मनी काउंसिल एमपी मिस्टर धीरज कुमार जी जो पंजाब कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, आपसे अनुरोध है धीरज जी आप भी मंच पर आ जाएं। दूसरा एमपी है ग्लोबल हार्मनी काउंसिल एमपी प्रीति चौधरी जी जो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, आपसे अनुरोध है आप भी आए मंच पर, और तालियों के साथ, आपकी ताली रुकनी नहीं चाहिए। यूनिवर्सल पीस फोरम एमपी परेश भाटिया जी जो गुजरात कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और यूनिवर्सल पीस फोरम एमपी मधुकर कुमार जी जो कि महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। सो सब मंच सज चुके हैं, आप लोग की बस तालियों की ही कमी है जो थोड़ा सा हमें लग रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 थैंक यू। तो मैं साथ ही साथ बहुत ही ब्रीफ में सबका परिचय देना चाहूंगी। आप सभी जानते हैं हमारे स्पीकर महोदया जी, आदरणीय हमारी मीठी प्यारी चंद्रिका दीदी जी हमारे बीच में थोड़ी देर में मौजूद होंगे, लेकिन मैं उससे पूर्व, परिचय से पूर्व, मैं बहनों से अनुरोध करना चाहूंगी हमारे जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर एंड एमपीज को फूलों के द्वारा स्वागत करेंगे, और साथ साथ जो ताली हमारे तीन तीन की जो बैच में तीन ताली बजते वो बजते रहे। 1 2 3 1 2 3 या तालियों की शोभा है, मंच पर फूलों के द्वारा स्वागत हो रहे हैं, तालियों के द्वारा आप मंच के नीचे से स्वागत कर रहे हैं। बहुत सुंदर तालमेल है स्वागत का, इससे पता चलता है सचमुच आज आर्ट एंड कल्चर के ग्रुप यहाँ बैठे हैं, तालियों की ताल से ताल मिलाते हुए, सद्भावना के गुण को आगे बढ़ाते हुए हम अपने 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 घर के परिवार के मेंबर्स को भी ये सद्भावना का गुण सिखाएं। वही सिंबल हम इस तालियों के द्वारा देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, बजाते रहिए। हेल्थ के भी प्रतीक है ताली बजाना, एक्यूप्रेशर होता है। वेरी गुड। देखते हैं थकते कौन है, स्वागत करने वाले मंच पर थकते हैं या ताली बजाने वाले थकते हैं। यहाँ पर भी ऊपर में मिनिस्टर्स एंड एमपी का स्वागत हो रहा है, और यहाँ पर हमारे लोकसभा, हमारे नागरिक, आप सबका, आप खुद ही स्वयं ही स्वयं का स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यार से आपने सभी मंच उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत ही प्यार से गुलदस्ते के साथ, बैच के साथ, दिल की सच्ची भावना से, मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शॉर्ट में सबका परिचय देना चाहूंगी। हमारे स्पीकर महोदया जी, आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, आप सभी जानते हैं इस विंग के, आर्ट एंड कल्चर विंग, राज्य योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के इस विंग के और यूथ विंग के आप चेयरपर्सन हैं। महादेव नगर, ब्रह्म कुमारी महादेव नगर सब जोन के आप डायरेक्टर हैं। आप इस ब्रह्म कुमारी संस्था के कमिटी मेंबर्स में से एक हैं, जो राजयोग शिविर जो सदियों से चलते आ रहे हैं ब्रह्म कुमारी के अंदर, तो उस राजयोग शिविर की जो शुरुआत है वो हमारे मीठी आदरणीय दीदी जी ने की है, और आपके नेतृत्व में युवा प्रभाग के द्वारा जो प्रोजेक्ट हुई है उसमें कई प्रोजेक्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, और उसमें बहुत अच्छे स्थान पर ये जो प्रोजेक्ट है उसको बहुत अच्छा ऊंचा स्थान मिला है। इसके लिए दीदी के लिए बहुत जोरदार ताली हम बजाएंगे। आप युवाओं की सेवा के लिए 1 मई 2002 की तत्कालीन गुजरात के गवर्नर सुदर्शन सिंह भंडारी जी के द्वारा गुजरात गौरव से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे हमारे चंद्रिका दीदी जी एस स्पीकर के रूप में इस पार्लियामेंट में मौजूद होंगे थोड़ी ही देर में, और हमारे बीच में डिप्टी स्पीकर के रूप में आदरणीय दयाल भाई जी हैं। दयाल भाई जी के लिए बहुत जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। दयाल भाई जी को 1986 में दुबई के ब्रह्म कुमारीज मेडिटेशन सेंटर में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी से ही आपका संपूर्ण निश्चय परमात्मा के प्रति, संस्था के प्रति बहुत अच्छी तरह से जागृत हुई और तभी से ही बहुत ही निमित्त भाव आपके अंदर आया और तभी से ही संस्था के प्रति आप सेवाधारी बन करके निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और धीरे धीरे ये निस्वार्थ की भावना इतने ऊंचे लेवल तक पहुंच गए कि आपने 1995 में पूरा परिवार सहित अपने आप को इस संस्था के अंदर समर्पित किया पूरे परिवार सहित और तब से ही इस ज्ञान सरोवर में आप रह रहे हैं और अभी वर्तमान समय आर्ट एंड कल्चर विंग के एस वाइस चेयरपर्सन आप सेवारत है और रिसेप्शन में आप सदा ही मुस्कुराते हुए सबका अभिनंदन करते हुए आप अपनी कला को विशेषता को बिखेरते हुए ये सेवा दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में आर्ट एंड कल्चर कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में सतीश भाई जी मौजूद हैं। सतीश भाई जी हाथ हिला करके सबका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। आप बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त आपने किया है। 1970 में इस ज्ञान में आकर के 1981 में आपने अपना जीवन ब्रह्म कुमारी इसमें समर्पित किया है और आपकी पहचान आपका गीत है, आपकी कविता है, आपकी आवाज है और आपने कई गीत लगभग 6000 से भी ज्यादा आपने गीतों की रचना की है, खुद ने भी गाए है और अलग अलग महान विभूतियों ने भी आपके गीत गाए हैं, जैसे कि महेंद्र कपूर जी, आशा भोसले जी, अनुराधा पोटवाल जी, कृष्ण कविता कृष्ण मूर्ति जी, सुरेश वाडकर जी आदि ऐसे महान गायकों ने आपके गीत को आवाज दी है। ऐसे सतीश भाई जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है आर्ट एंड कल्चर के, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और ब्रह्म कुमारी राधा दीदी जी जो कि फैमिली हेल्थ कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हमारे बीच में मौजूद है, आपका भी दिल से स्वागत है। आप बहुत ही सक्रिय रूप से यहाँ सेवा देते हैं अलग अलग विंग्स में। आप वैसे सोशल विंग में भी आप सेवा देते हैं लेकिन आर्ट एंड कल्चर में भी आपकी बहुत रुचि है तो आर्ट एंड कल्चर में भी एक्टिवली आप सेवा दे रहे हैं। 1984 से आप पूर्णकालिक ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप से आप सेवा दे रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में एमए एमफिल किया हुआ है और आपकी ये जो प्रारब्ध है भारतीय सांख्यिकी सेवा माना आईएसएस में चयनित होने के बावजूद भी आपने उस पद को ना स्वीकार कर परमात्मा की सेवा में अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित होने का चयन किया है। ऐसा श्रेष्ठ जीवन चयन करके आपने अपने ही जैसे अनेकों को बनाया है। ऐसे निस्वार्थ सेवाधारी बहुत ही श्रेष्ठ परमात्म दिल तख्त के अधिकारी बन करके सबको भी आप ऐसे बना रहे हैं। हमारे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। स्टेट मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर स्टेट मिनिस्टर के रूप में हमारे बीच है कवि मनोज खुशनुमा जी। आप वैसे तो ग्रेटर नोएडा से हैं और साथ ही साथ बचपन से ही आप ईश्वरीय ज्ञान को आपने प्राप्त किया है। लौकिक में आप पूर्व सीनियर बैंक मैनेजर के रूप में आप कार्यरत थे परंतु वर्तमान समय आप डिजिटल व्यवसाय आप चला रहे हैं और साथ ही साथ आपके जो इंटरेस्ट है वो कवि के रूप में है तो कविता खूब सारे लिखते हैं। बहुत अच्छी मन की भावनाओं को प्रकट करने का ये बहुत सुंदर जरिया है तो ये आप करते हैं और इस आर्ट एंड कल्चर विंग के आप बहुत ही एक्टिव मेंबर है, लाइफ मेंबर भी है और आपने बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। अगर मैं पढ़ने लग जाऊं तो सारा पार्लियामेंट इसी में बीत जाएगा तो इसमें एक्सक्यूज मी, मैं इसको नहीं अभी पढ़ती हूं। तो आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ फैमिली हेल्थ स्टेट मिनिस्टर के रूप में हमारे बीच में पारुल बहन है। पारुल बहन का भी दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप बचपन से ही माता पिता के साथ ज्ञान में बाबा के पास आए और 32 इयर्स से ऐसा ब्रह्म कुमारी संस्था में समर्पित टीचर के रूप में आपने अपने जीवन को सरेंडर किया है। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है राजयोगा, तो राजयोग मेडिटेशन को आपने खुद ने प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस करके लोगों तक पहुंचाना खुद के एक्सपीरियंस से आपकी ये हॉबी है। 18 वर्ष से ब्रह्म कुमारी हेडक्वार्टर म्यूजियम में आपने सेवाएं दी है, आर्ट एंड कल्चर विंग के आप एक्टिव मेंबर हैं, आपने कई प्रोग्राम आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कई प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे 2016 में तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ आपने मिलकर के भट्टुकम्मा ऐसा फेस्टिवल मनाया है, 2017 में 15 स्टेट्स के डांस आर्टिस्ट को बुला करके तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ आपने मिलकर के ये कार्यक्रम किया, ऐसे 2018, 2019 और 2019 में भी दो ऐसे प्रोग्राम आपने बड़े बड़े गवर्नमेंट के साथ मिलकर के किए हैं। पारुलबेन, आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबका शॉर्ट में दे रही हूँ क्योंकि पार्लियामेंट बहुत लंबा और इंटरेस्टिंग चलने वाला है, और साथ ही साथ जो हमारे ग्लोबल हार्मनी काउंसिल एमपी पंजाब कंस्टिट्यूएंसी से है मिस्टर धीरज जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। श्री धीरज कुमार जी वर्तमान में अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम के पद पर कार्यरत है, आपने एमबीए एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है तथा प्रशासनिक सेवा में अपने उत्कृष्ट नेतृत्व एवं कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं। आप एक संवेदनशील लेखक, कवि, सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक विश्लेषक भी हैं। वर्तमान में आप हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज ऑफिशियल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी आप महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। पीस यूनिवर्सल फोरम एमपी के रूप में महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे बीच में श्री मधुकर बाबू राव प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया है। आप एक वरिष्ठ रंगकर्मी, नाटककार, निर्देशक, अभिनेता, साहित्यकार हैं और आपने महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार, निर्देशक एवं साहित्यकार के रूप में आपने काम किया। आपने बीकॉम की शिक्षा को प्राप्त करके आपने जिला परभरी के रूप में विस्तार अधिकारी के रूप में दीर्घकाल तक सेवाएं प्रदान की है। प्रशासनिक सेवा के साथ साथ आपने रंगमंच एवं साहित्य को भी समर्पित जीवन आपने दिया है, आपका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। यूनिवर्सल पीस फोरम एमपी गुजरात कॉन्स्टिट्यूएंसी से श्री परेश भाटिया जी, आपका भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं। श्री परेश भाटिया जी ने सूरत महानगर पालिका के जनरल जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें आप कार्यरत थे, और उससे आपने दीर्घकाल तक सेवाएं प्राप्त की है, और सेवानिवृत्त के पश्चात भी आप पूर्ण समर्पित के साथ सामाजिक एवं मानवीय कार्यों में आप सक्रिय हैं। आपने कई ऐसे सेवा की है सोसाइटी के लिए, जैसे नेत्रदान, आई डोनेशन, आई बोल कनेक्शन कलेक्शन, बॉडी डोनेशन के क्षेत्र में जन जागरक एवं प्रेरणा फैलाने में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। आपने समाज में अंगदान एवं देहदान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए निरंतर कार्य किया है, आपका भी परेश भाटिया जी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन है इस पार्लियामेंट में। और साथ ही साथ श्रीमती प्रीति चौधरी जी, आपका भी दिल से स्वागत करते हैं। श्रीमती प्रीति चौधरी जी न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और आप एक अनुभवी वक्ता भी हैं, प्रशिक्षाविद भी हैं, और आपने 24 इयर्स से अधिक शिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन का अनुभव प्राप्त किया है। आपने चयन किया हायर सेकेंडरी का नहीं परंतु प्राइमरी स्कूल को चयन किया, और अनेक ऐसे प्राइमरी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में आप रहे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम प्राइमरी स्कूल में जब जाते हैं तो बच्चों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो अपने आप में वो एक कला होती है। हमारे अंदर की जो बचपन है वो जागृत हो जाते हैं, तो आप एक प्राइमरी स्कूल के लेवल के वो हेडमिस्ट्रेस भी रहे हैं और अनेक दिल्ली के स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में भी आप कार्यरत रहे हैं। ऐसे हमारी मीठी बहन प्रीति का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। तो अभी हम तैयार हैं आज के पार्लियामेंट की शुरुआत करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, सब रिवाइज करें, टॉपिक क्या है? आर्ट ऑफ हार्मनी फॉर मेलोडियस फैमिली लाइफस्टाइल, माना सद्भावना की कला के द्वारा परिवार में मधुर जीवन शैली को हम कैसे बनाए रख सकते हैं, और जिसमें आर्ट का जो फुल फॉर्म बताया है वो है अवेयरनेस, रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ टू ओपन द सेशन। अवेयरनेस माना क्या है, जिसको हिंदी का ट्रांसलेशन दिया गया है जागृति। तो अवेयरनेस माना हम जहां बैठे हुए हमें पता है कि मेरे आजू बाजू कौन है, तो अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस माना एक ज्ञान का होना, एक समझ का होना कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या बोलना है, ये एक अवेयरनेस है। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है कि मुझे किस प्रकार से विचार रखनी चाहिए और किस प्रकार के लोगों के साथ मुझे क्या वार्तालाप करना चाहिए, ये अवेयरनेस है। एक रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो मैं करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं, उस कर्म के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या परिणाम आने वाले हैं, ये जो सोच रख पाना, ये जो समझ रख पाना, इसको ही अवेयरनेस कहा जाता है। और अवेयरनेस भी तीन चार लेवल के होते हैं। पहला है इन्फॉर्मेटिव अवेयरनेस, जिसको हम इन्फॉर्मेशन के जरिए बच्चों को, जवान को, मिडिल एज वालों को, बूढ़ों को, है ना, उन्हों को अवेयरनेस दिया जाता है कि इसको करने से ऐसा होता है, हाइजीनिक वे के लिए भी ये ऐसा करने से बीमारी फैलती है। तो ये है इन्फॉर्मेटिव अवेयरनेस। दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं के अवेयरनेस, मैं कौन हूं, मेरे विचार के अंदर कौन कौन से विचार चलते हैं, मन के अंदर कौन कौन से विचार चलते हैं, और किस प्रकार के विचार सही हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, और गलत नहीं है और गलत है। यह है सेल्फ अवेयरनेस के अंदर जो आती है, जिसको डिटेल में आप करो तो ये सारी बातें इस संस्था में सिखाई जाती हैं। तीसरा है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस के रूप में हम सोशल रीति से हम सेवाएं करते हैं, गांव-गांव में जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पढ़ने की अवेयरनेस सिखाते हैं, बताते हैं कि पढ़ने से क्या लाभ होगा, क्या नहीं होगा, इसका क्या, कोई भी टॉपिक पर अवेयरनेस देते हैं सोसाइटी के अंदर, उसको सोशल अवेयरनेस कहा जाता है। और लास्ट में है स्पिरिचुअल अवेयरनेस, जिसको हम पहले रखना चाहिए। स्पिरिचुअल अवेयरनेस माना मैं आखिर कौन हूं, क्या मैं वास्तव में ये जो दिखाई दे रहे हैं 5 फुट का, 6 फुट का, जो 5 तत्व का बना हुआ है, क्या यही मैं हूं? तो ये अवेयरनेस है। और इस सारे अवेयरनेस के साथ फिर दूसरा स्टेप आता है रियलाइजेशन। जब अवेयरनेस पता पड़ता है कि अवेयरनेस मात्र से ही हम आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन जब रियलाइजेशन होता है तो एक स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं, और उस एक स्टेप से बहुत कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। एंड रियलाइजेशन माना क्या, अवेयरनेस माना एक समझ की, एक ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन रियलाइजेशन माना डीप अंडरस्टैंडिंग, अंदर तक छू जाना कि अच्छा ऐसा होता है। अवेयरनेस माना एक जरा सी रिकॉग्निशन, अच्छा इसको ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अंदर रूट तक नहीं गया है। जब वो अवेयरनेस रूट तक जाता है, दिल को छूता है, मन को छूता है, तो वो रियलाइजेशन कहा जाता है। और रियलाइजेशन जैसे कि एक इनर अवेकनिंग है, अंदर में एक जागृति आती है कि अभी मुझे, मेरी आंखें खुल गई है, अब अब मुझे ये नहीं करना है। जो अवेक जो अवेयरनेस है उसकी जो डीपर लेवल है उसको रियलाइजेशन कहा जाता है। अगर रियलाइजेशन को अगर हम एक शॉर्ट में कहें तो रियलाइजेशन इज द मोमेंट व्हेन नॉलेज बिकम पर्सनल ट्रूथ एंड बिगिन टू रीशेप वन्स थॉट एटीट्यूड एंड एक्शन। रियलाइजेशन वो है, वो वक्त है जिस वक्त में वो ज्ञान मेरा एक पर्सनल सत्य बन जाता है, और जहां पर्सनल सत्य मेरे लिए बन जाता है तो मेरा विचार, मेरे विचारधारा, मेरा एटीट्यूड, मेरे जो एक्शंस है वो परिवर्तन के मार्ग की ओर, उस दरवाजे की ओर चलना शुरू कर देते। इसलिए वेयर देयर इज सेल्फ रियलाइजेशन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, और ट्रांसफॉर्मेशन वाना संपूर्ण परिवर्तन। एक होता है चेंज, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज सुपरफिशियल लेवल का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इनर लेवल का होता है। जिस प्रकार से आप आटा से जो आटा गूंथते हैं, रोटी बेलते हैं, तो उसको रोटी नहीं कहा जाता है, फिर भी आटा है। और जैसे ही उस रोटी, बेले हुए रोटी को गर्म तवे पर डालते हैं और वो उसका परिवर्तन रूप होता है तो वो आटा नहीं रहेगा, अब वो रोटी बन गया। अब रोटी से आटा में नहीं बदला जा सकता है। तो एक बार परिवर्तन के मार्ग में चल देते हैं तो वापस लौट के आना ये मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है। और अगर परिवर्तन हो रहा है ऐसा महसूसता होती है परंतु वापस लौट करके वही स्थिति में आते हैं तो वो परिवर्तन कदापि नहीं है। तो ये जो आर्ट ऑफ हार्मनी फॉर मेलोडियस लाइफस्टाइल, इस पर ये ओपन किया है सेशन को। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं डिप्टी स्पीकर से परमिशन सीख करना चाहती हूँ कि क्या हम इस पार्लियामेंट, आज के पार्लियामेंट को हम शुरू करें। माइक में आप प्लीज आप परमिशन ग्रैंड कीजिए। आप परमिशन माइक में ग्रैंड कीजिए। थैंक यू। अभी परमिशन मिल गया है, हम शुरू करते हैं। जो मेरा पहला प्रश्न, हमारे हम जो भी प्रश्न पुटअप करेंगे, मैं पूछना चाहूंगी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में बैठे हुए सतीश भाई जी हैं, उनको कि क्या जागरूकता। हाँ, एक और बात, सॉरी, कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन होकर के, नतमस्तक होकर के आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना विचार 3 मिनट में प्रस्तुत करेंगे, और जैसे ही 3 मिनट पूरा होगा मैं माइक उठा करके आपके जो विचार है उसमें दखल डालने का हस्तक्षेप करूंगी। हाँ, ये स्पिरिचुअल पार्लियामेंट है तो इस प्रकार के हरकत नहीं होंगे, माइक फेंकना, कुर्सी फेंकना तो वो तो नहीं होंगे, लेकिन विचार अवश्य एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हो सकता है। तो इस पर आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। 3 मिनट क्योंकि मेरे पास टाइमर के रूप में मैंने सेट कर दिया है, तो सबसे पहले 3 मिनट, हाँ 3 मिनट का ध्यान दीजिएगा। और 3 मिनट में अपने कंटेंट को बोलना, ये भी बहुत बड़ी कला है। सो इस कला को आप सभी प्रस्तुत करेंगे आज इस मंच से, इस पार्लियामेंट से। तो पहला सवाल कैबिनेट मिनिस्टर सतीश जी आपको जाता है कि क्या जागरूकता, महसूसता और परिवर्तन घटते हुए पारिवारिक मूल्यों को पुनर्जीवित कर सकते हैं?
ओम शांति। प्रश्न है क्या जागरूकता, महसूसता और परिवर्तन ये घटते हुए पारिवारिक मूल्यों में परिवर्तन ला सकते हैं, क्या सफल हो सकते हैं? तो एक शब्द में, बिल्कुल सफल हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब परमपिता परमात्मा शिवबाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए तो सर्वप्रथम इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उनके अंदर एक जागरण लाए, जागरूकता इस बात के लाए कि सेल्फ जागरण हो, पहले आत्म जागृति हो कि तुम कौन हो, फिर ये जागृति आई कि तुम्हारा कौन है, अपने बारे में बताया, फिर ये जागृति आई कि तुम्हें करना क्या है। इस तरह से जब जागृति आई, अवेयरनेस आया, तो ब्रह्मा बाबा नए विश्व की स्थापना के निमित्त बन गए और एक विशाल संगठन की रचना की, जिसको हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहते हैं। इसके साथ में जब जागरण आया तो परमात्मा, तो ब्रह्मा बाबा को कई साक्षात्कार करा करके जब ब्रह्मा बाबा को ये रियलाइज हो गया कि निश्चित रूप से अभी विश्व परिवर्तन में पूरा सक्रिय होना है, तो बाबा ने अपना सारा कारोबार समेट लिया हीरे का, और उन्होंने तुरंत ही अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इसके साथ साथ जब ब्रह्मा बाबा को रियलाइज हो गया कि परमात्मा मेरे स्तन के द्वारा नए विश्व की रचना कर रहे हैं, उसी समय रियलाइज हुआ कि मुझे प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, तो उन्होंने सारे जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं ग्रंथों में उसका स्वरूप बन गए, और देखते देखते एक साधारण से व्यापारी, एक साधारण से व्यक्ति, विशेष भी व्यक्ति थे, लेकिन देखते देखते वो साकार दादा लेखराज से वो प्रजापिता ब्रह्मा बन गए। तालियां बजाएं, अभिनंदन करें, ये रियलाइजेशन का परिणाम है। बिना रियलाइज के इन्फॉर्मेशन, कितना भी अवेयर के लिए, अवेयर जागरण तो हो जाता है, लेकिन जब वो अंतर में उतरने लगता है तो। और ये परिवर्तन तीन तरह की लेबल होते हैं। हमको अगर परिवर्तन करना है, महसूस करना है, तो महसूसता होती है कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा है, मुझे अपने पारिवारिक मूल्यों को अच्छा देना है, बनाना है, ठीक करना है, तो करेंगे, जरूर करें, करना चाहिए और होना चाहिए, एक पहला लेवल। दूसरा लेवल है कि नहीं, बात ठीक है, करना तो चाहिए, अब मैं इसके लिए तैयार हूं, और फिर वो तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी दृढ़ता की कमी होती है। मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है। हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने महसूसता की शक्ति के ये अलग अलग लेवल बताए, और उस लेवल से उनके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया, महसूसता हुई, और उसका परिणाम है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से आपने तीनों लेवल्स को आपने समझाया है ब्रह्मा बाबा की कहानी के रूप में। तो हमारे बीच में भी आदरणीय हमारे माननीय महोदया स्पीकर जी पहुंच चुके हैं। हमारे स्पीकर महोदया, स्पीकर मैम का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं मंच पर। तीन ताली, 1 2 3। थैंक यू वेरी मच। स्पीकर महोदया जी, हमने अभी पार्लियामेंट शुरू कर दिए हैं, और पहला जो हमने क्वेश्चन कैबिनेट मिनिस्टर जी सतीश जी से ये बात पूछी है कि क्या जागरूकता, महसूसता और परिवर्तन घटते हुए पारिवारिक मूल्यों को पुनर्जागृत कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं, इस पर आपने अपना विचार दिया ब्रह्मा बाबा के जीवन के एग्जाम्पल को लेकर के। तो इस पर मैं श्रीमती प्रीति चौहान जी से मैं पूछना चाहूंगी, जो भी सतीश जी ने जो बताया है, तो उसके अंतर्गत प्रैक्टिकल फैमिली लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है, तो क्या ऐसे ही ये जो फ्लो में बताया है, क्या इतना इजी है जो हम इसको कर सके? ऐसे एमपी के रूप में, न्यू दिल्ली से ऐसे एमपी के रूप में आप आए हुए हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को। हाँ, इससे पूर्व मैं बहनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आदरणीय दीदी जी का, स्पीकर महोदया जी का फूलों के द्वारा, बैच के द्वारा स्वागत करें, और वही फिर से वो ताल से ताल मिलाते हुए ताली हम बजाए। 1 2 3 1 2। एमपी साहब आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। ओम शांति। भाई साहब ने इतने अच्छे ढंग से शायद हमारे सबके दिल की बात कह दी कि आज हमारे परिवारों के जो मूल्य गिर चुके हैं उनको हमें कैसे अवेयरनेस के साथ और उसको पहचान के और ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन आम जनता की ओर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई साहब आप जिस वातावरण में रहते हैं, दो दिन से यहाँ पे हम भी आए हैं और अनुभव कर रहे हैं, यहाँ रहकर ये सोचना और ये करना शायद सरल हो सकता है, लेकिन जब हम अपने परिवारों की बात करते हैं जहाँ प्रैक्टिकल में हम रहते हैं, जहाँ जनरेशन गैप भी है, हमारे जो बच्चे हैं वो आज बहुत आधुनिकता की ओर बढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले तो उनको वो चीज़ अवेयरनेस में उनकी लाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल उनके पास गूगल से, इंटरनेट से इतनी जानकारियां उन्होंने हासिल कर ली हैं कि जो हम सीख कर जाएंगे भी और उनको अवेयर करने की कोशिश भी करेंगे तो उसमें हमें काफ़ी मेहनत लगेगी और तब जाके कहीं कुछ परसेंट उनको अवेयरनेस आएगी। उसके बाद उसको रियलाइज करना कि हाँ जो चीज़ वो कर रहे हैं उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वो आधुनिकता में जी रहे हैं लेकिन परिवार के मूल्यों को भी पुनर्जीवित करना और उन्हें बनाए रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो महसूसता उन्हें करा पाना थोड़ा सा उस पार्ट पे कहीं हमें शायद समस्या देगा, ये मैं जनता की ओर से बोल रही हूँ। तो आप सब इससे सहमत करते हैं?
और जोर से बोलें, हाँ हाँ।
फिर ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करें कि अगर अवेयरनेस आ जाएगी और वो उस चीज को महसूस कर लेंगे तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन मैं ये अनुरोध करती हूँ आपसे कि आप थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें कि जो ये पहले दोनों स्टेप्स हैं, ये परिवार में जाके हम उन आधुनिकता के दौर में घूम रहे बच्चों को, पीढ़ियों को कैसे हम उनको इस चीज से अवगत कराएं और सरलता से कैसे हम अपनी बात उन तक पहुंचाएं। ओम शांति।
अभी आपके पास और समय है, आप शेयर करना चाहते हो, 39 सेकंड्स आपके पास है।
क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे संस्थाओं में लोग जाते हैं, हम लोग जैसे यहाँ आए, आज सबके माता पिता यहाँ आए और उनको बहुत अच्छी महसूसता हो रही होगी, लेकिन जब उनको अपने बच्चों को यहाँ लाना होगा तो उनको समझाना और उनको यहाँ तक लाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अनुभव कहता है कि रोल मॉडल बनके हम शायद उस काम को थोड़ा इजी कर सकते हैं, और जो चीज़ हम उन्हें नहीं समझा सकते अगर वो यहाँ तक आ जाएं तो इस वातावरण में आकर और वरिष्ठ लोगों से मिलकर, ज्ञानी लोगों से मिलकर उनकी वो जागृति, उनकी वो रियलाइजेशन और जल्दी यहाँ पे आके हो सकती है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति बहन आपका।
ओम शांति।
आपने अपने प्रश्न का अपने ही जवाब दे दिया है, लेकिन कुछ प्रश्न रह चुके हैं। सचमुच इस वातावरण के अंदर तो सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत आसानी से होता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी, परंतु जहां पर हम कलयुगी दुनिया में मौजूद है वहां पर इतना सहज नहीं है, ये आपने बिल्कुल सटीक बताया है। अब इस बात को और आगे बढ़ाते हुए, अवेयरनेस को और बढ़ाते हुए, मैं हमारे दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर मनोज जी से अनुरोध करती हूँ, ये प्रश्न आपके समक्ष रखती हूँ कि क्या पारिवारिक सद्भावना के लिए भौतिक सफलता से ज्यादा जरूरी भावनात्मक जागरूकता है? इज इमोशनल अवेयरनेस मोर इम्पोर्टेंट देन मटेरियल सक्सेस फॉर फैमिली हार्मनी? तो इस पर अपना आप विचार रखें। आपका समय शुरू होता है अब।
अध्यक्ष महोदया जी, वर्तमान समय में लोग अपनी सफलता का मापदंड एक भौतिक सफलता को, भौतिक उपलब्धियों को मान रहे हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के सफल होने को इसी मापदंड पर ही देखते हैं। इसलिए आज हर व्यक्ति अपनी भौतिक प्रगति की होड़ में ही लगा हुआ है और इसी प्रगति को करना चाहता है, और इस कारण से वो कई बार अपने जीवन मूल्यों और पारिवारिक मूल्यों के साथ भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है, और इससे पारिवारिक सौहार्द कैसे खराब होता है, इसका एक दोहरा प्रभाव पड़ता है। एक तो जब वो अपने भौतिक विजय को, भौतिक उपलब्धियों को तरजीह देता है, महत्वपूर्ण मानता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो अपना अधिकतम समय वहां लगाता है जिसमें परिवार के लिए उसके पास समय कम बचता है। इसलिए परिवार में परस्पर विश्वास, एकता, सामंजस्य की कमी हो जाती है, तो सीधा असर पड़ता है। और दूसरा, जब वो भौतिक सफलता को ही महत्वपूर्ण मान रहा है तो उसे प्राप्त करने के लिए कई बार अनुचित साधन, अनुचित माध्यम भी प्रयोग कर लेता है। और यहां उन माध्यमों से भले उसके पास उपलब्धियां, वो साधन भौतिक आ जाएं, लेकिन उसके साथ साथ ही एक नकारात्मक ऊर्जा भी उसके परिवार में आ जाती है जो उसके परिवार की सुख शांति को समाप्त कर सकती है और पारिवारिक सौहार्द को नष्ट करती है। और हम सब इस बात के अनुभवी हैं, पिछले कुछ वर्षों से अपने जीवन को हमने देखा है कि भले हमारे परिवारों में भौतिक साधन उपलब्धियां कम रही हों, लेकिन परिवार के अंदर एक बड़ा एक सौहार्द का वातावरण रहा था जिससे बड़ा आनंद का वातावरण निर्माण होता है। और वास्तव में जब व्यक्ति भौतिक प्रगति के लिए परिवार से दूर होता है तो उसका परिवार सफर करता है, विशेष तौर पर बच्चे और बूढ़े, जिनको उस आयु में सबसे ज्यादा पारिवारिक सौहार्द और वातावरण की जरूरत होती है, उनका जीवन ही सबसे ज्यादा एकांकी हो जाता है। और पारिवारिक जो भौतिक सफलता प्राप्त कर भी लेता है, अनजाने में कहीं पे उसके अंदर एक ईगो आ जाता है जो पारिवारिक रिश्तों में दरार डालने का कार्य कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जो भावनात्मक रूप से जागरूक है वो स्वयं को भी समझता है, औरों को भी समझता है, सबकी भावनाओं को, तो वो सहज ही समस्याओं का निवारण कर लेता है जिससे पारिवारिक सौहार्द का वातावरण बना रहता है। तो हम ये कहेंगे कि भौतिक जो सफलता है उससे हम ईंट और पत्थरों से मकान तो बना लेते हैं, वो तो भौतिक हमारी सफलता है, लेकिन उस भौतिक सफलता से प्राप्त हुए मकान को घर बनाना, ये भावनात्मक जागरूकता से उत्पन्न संवेदनशीलता और समझ और समझदारी, संवेदना से हम इस काम को कर सकते हैं, सौहार्दपूर्ण परिवार बना सकते हैं। तो अंत में मैं केवल ये निष्कर्ष रूप में यही कहूंगा कि भौतिक सफलता हमारे जीवन को चलाने के लिए और इसे आरामदायक बनाने के लिए आवश्यक है, लेकिन सकारात्मकता और ये जागरूकता, भावनात्मक जागरूकता, ये हमारे परिवार को एक सूत्र में बांधने का आधार है। इसलिए
बहुत धन्यवाद।
इसलिए सकारात्मक जागरूकता, भावनात्मक जागरूकता अधिक महत्वपूर्ण है भौतिक सफलता के बनिस्बत।
बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचार रखे। तो अभी मैं अनुरोध करती हूँ मधुकर जी से, जो कि यूनिवर्सल पीस फोरम के एमपी है, जो महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि आपने हमारे स्टेट मिनिस्टर का सुना विचार, तो क्या सचमुच केवल भावनात्मक जागृति पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन ला सकती है? क्या प्रैक्टिकल है ये? तो इस बात को आप अपना रखिए विचार, और मिनिस्टर साहब को भी पब्लिक के तरफ से विचार आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो तभी ये एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है। आप
भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन बात ऐसी है कि आजकल का दौर अगर देखा जाए तो हर आदमी एक दौड़ में लगा है। अब वो दौड़ है पैसों की दौड़, भौतिक सुख की दौड़। सुख कहां पर मिलता है तो आज के आदमी को पूछा जाए, बच्चों को पूछा जाए तो वो पूछता है, बोलता है कि मुझे इतना इतना चाहिए, ये चाहिए। और बात ऐसी है कि हर बच्चा, हर युवा जो शिक्षित हो रहा है वो शिक्षा प्रैक्टिकली किस तरह से ले रहा है? हाथ में कागज की पर्ची आ गई है लेकिन भावनाएं मर चुकी है, दूर हो चुकी है। क्या हो रहा है कि आदमी ये सोचता ही नहीं आजकल कि मुझे क्या चाहिए, हमारे लिए शांति कितनी जरूरी है, हमारा परिवार कितना जरूरी है। इसलिए भावना जो है वो बहुत कमजोर होती जा रही है। पहले एक जमाना ऐसा था कि बाजू वाले जो हमारे घर के बाजू में रहते थे उनके वहां से कुछ तो भी पका तो आ जाता था, हमारे घर में कुछ पकता था तो उनके घर पे जाता था। आज के दौर में ये बात बहुत कम हो चुकी है और यही कारण है कि ये चुनौती है खास तौर पे कि हमारे परिवार को एकत्रित घर अगर लाना है तो पहले जो आपने कहा कि आजकल का दौर जो है तो इंटरनेट का दौर है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारी आज की पीढ़ी जानती ही नहीं है। अगर आपने देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो फूल बर्थडे के लिए इस्तेमाल होते हैं, वही श्रद्धांजलि के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसा है, इसलिए ये भावनाएं जो है वो जागृत होना बहुत जरूरी है। और ये सबसे बड़ी चुनौती हमारा परिवार एकत्रित लाने के लिए बड़ी चुनौती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम अगर मिट्टी से जुड़ते हैं, मराठी में एक दो शब्द है, माता और माती, जब तक हम हमारी माता को पहचानते नहीं, क्योंकि हमारी माता और हम में जो अंतर है, पूरी उम्र का जो अंतर है, वो अंतर कहां से है, किस तरह से है? लेकिन भावनाएं जो करीब होती है, तब हम मिट्टी से जुड़ सकते हैं और माता से जुड़ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार जो आज यहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान को हम दिल में बसाते हैं तो ही सब कर पाते हैं, नहीं तो परिवार एकत्रित आना बहुत मुश्किल है। अब जब भावनाएं जुड़ना है तो सबने एक साथ रहना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। आपको चैलेंजेस बतानी है कि ऐसी भावना क्यों नहीं हो रही है। जो एमपी से आप लोगों से, आप लोगों को जैसे बताया गया, आप लोगों को उसका ऑपोजिट, उसका जो चैलेंजेस जो पब्लिक फेस कर रही है, सो पता है भावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। भावना की जागरूकता से ही रियलाइजेशन आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है भावना की जागरूकता। लेकिन वो क्यों नहीं हो रही है, क्या क्या चैलेंजेस है, वो आपको आप दो मिनट में अगर बताएंगे तो आपको समय देते हैं।
इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी ने ये सोचना बहुत जरूरी है कि मेरा सुख किस चीज में है।
आपको आंसर नहीं बताना है, चैलेंज बतानी
है। इसके अंदर जो चैलेंज है, तो आदमी ने पहली बात है ये जो दौड़ लगी है, वो दौड़ गुणों की दौड़ जो है वो कम करना बहुत जरूरी है। ये जो चैलेंज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। अगला जो हमारा प्रश्न है, हमारे राधा दीदी जी हैं हमारे बीच में उपस्थित। ऐसा फैमिली हेल्थ कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या स्व परिवर्तन, अभी हमने पहले अवेयरनेस की बात करी, रियलाइजेशन की बात करी, अभी स्व परिवर्तन मजबूत पारिवारिक संबंधों का आधार बन सकता है, कैसे? वो आप अपना विचार 3 मिनट में रखेंगे। माइक ऑन कीजिए।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं आप सभी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करती हूं कि मैं बैठकर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। आपका जो प्रश्न है उसके आंसर में मैं कहना चाहूंगी, हाँ यह संभव है। सच्चे संवाद, आपसी विश्वास, आपसी स्नेह समझ एवं एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार की भावना के द्वारा ये संभव है। जब हम परिवारों में रहते हैं, संबंध निभाते हैं, आजकल हम ये देख रहे हैं कि कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि जो हमारे संबंध हैं वो बिखरते चले जा रहे हैं। और जब संबंध बिखरते हैं, संबंध टूटते हैं, और उस घड़ी अगर हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं, स्वयं चिंतन करते हैं, स्वयं के बारे में अवेयर होते हैं और एक लेवल पर आकर रियलाइजेशन करते हैं कि यहाँ मेरी कमी है, यहाँ मुझे बदलना चाहिए, और जब हम अपने को बदलते हैं और उस बदलाव के साथ अपने संबंधों के साथ हम संबंध निभाते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे संबंध बेटरमेंट की ओर जा रहे हैं, हमारे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं और सुख देने वाले होते जा रहे हैं। परंतु जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बदलाव लाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है उस घड़ी भी, क्योंकि टूटते संबंध अब सुखदायी हो रहे हैं, तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और उसमें मैं मुख्य रूप से 3 बातें कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात कि जिन संबंधों को हम फिर से बना रहे हैं, फिर से मजबूत करना चाह रहे हैं, हम उनके साथ समय गुजारें, उनके साथ अच्छा समय गुजारें। और जब हम अच्छा समय उनके साथ गुजारते हैं, तो उस समय में हम क्या बातें करें, क्या शेयरिंग करें, हम कुछ पिछले दिनों के बीते हुए समय के पलों को याद करते हुए जो अच्छे पल थे उन्हें याद करें, जो सुखदाई हो, जो खुशी दे, उन पलों को हम शेयर करें। दूसरी बात, जब हम संबंध निभा ही रहे हैं, भले अब बेटरमेंट की ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी बातें फिर भी आती हैं, छोटी छोटी बातें जो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, तो उनको लेट गो करते हुए चले। जब हम लेट गो करते हुए चलते हैं तो वो बातें डाइल्यूट हो जाती हैं। और तीसरी बात कि फॉरगिव करने की कला, जीवन में क्षमा करने की कला, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ऐसा कहा ही गया है, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। तो इसलिए इस बात को भी हम ध्यान में रखें। तो जब हम इस तरह से इन तीन चार बातों को जीवन में लेते हुए संबंध निभाते हैं, हमारे संबंध डेफिनेटली बेटरमेंट की ओर जाते हैं। हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार एक सुर में आने लगते हैं, एक ताल में आने लगते हैं।
बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही शॉर्ट समय में आपने सार को हमारे समक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं ग्लोबल हार्मनी काउंसिल एमपी, जो कि पंजाब कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धीरज जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपका विचार मैं सुनना चाहती हूँ, सभी सुनना चाहते हैं कि जो आदरणीय हमारे राधा दीदी जी, जो फैमिली हेल्थ कैबिनेट मिनिस्टर है, जो विचार रखा है वो कहाँ तक पॉसिबल है, क्या क्या चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, क्या सचमुच में इतना ईजी है फॉरगिव करना। आप अपना विचार रखिए, आपका समय शुरू होता है अब।
ऑनरेबल स्पीकर मैम, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, द टॉपिक विच हैज बीन सेलेक्टेड फॉर टूडेज डिस्कशन एंड द क्वेश्चन विच हैज बीन पुट अप बिफोर द हाउस टूडे इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इट इज अबाउट द मेलोडियस लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल रखा गया है कि हमारा जो जीवन है वो सौहार्दपूर्ण कैसे हो, और इसमें जो बात की गई है कि क्या आत्म परिवर्तन हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं उनको मजबूत बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, परंतु उसके संबंध में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, और उन चुनौतियों में एक सबसे बड़ी चुनौती मैं मानता हूं कि जो बात रखी जाती है वो हमेशा एक ऊपरी बात लगती है। जो हमारी आज की पीढ़ी है, जो हमारा युवा है, वो हर बात को तर्कसंगत रूप में देखता है। अगर अच्छा तर्क है और वो तर्क अगर विज्ञान की परिभाषा में खरा उतरता है तो उसको मानने को तैयार है, अन्यथा हम कितनी आध्यात्मिक बातें कर लें, कितनी बड़ी बातें कर लें, उन बातों को वो सही मानने को तैयार नहीं। तो इसमें एक चुनौती सबसे बड़ी ये है कि हम जो सवाल है उस सवाल को सही से समझें और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके सामने उसको सही तरीके से प्रस्तुत करें। समय बहुत कम है, इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी बात जो है वो जल्दी और समय सीमा में रख सकूं। तो इसमें मैं एक उदाहरण के तौर पे, एक बहुत बड़े थिंकर राइटर हुए हैं डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस, उन्होंने किताब लिखी फोर्स वर्सेस पावर, और उसमें उन्होंने एक स्केल ऑफ कॉन्सियसनेस जो है वो डिफाइन किया। उस स्केल में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जिन बातों में उन्होंने जो मार्क्स हैं वो 10 से देने शुरू किए और उन्होंने 1000 तक मार्क्स दिए, और ही स्टार्टेड फ्रॉम द फीलिंग ऑफ शेम, कि जब हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वहां से लेके और अप टू द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, जो जागृति की हमारी अवस्था है उस अवस्था तक वो उसको लेके गए। यानी कि सबसे नीचे उन्होंने शर्मिंदगी को रखा, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे भाव जो हैं वो रखे, और इसमें एक बड़ी सरप्राइजिंग जो बात सामने आई कि आज आप किसी को भी कोई बात अगर कहेंगे वो एक बार AI से जरूर पूछेगा, मेटा से जरूर पूछेगा। जब मैंने मेटा से ये सवाल किया तो एक कमाल की बात सामने आई, इसमें जो उन्होंने सबसे निचले स्तर पे जो भावनाएं रखी, शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, करेज, उसके बाद ये ग्राफ जो है वो ऊपर की ओर उठ रहा है, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजन, लव, जॉय, पीस एंड देन एनलाइटनमेंट। व्हेन आई वाज सर्फिंग इट, यू नो, ये मेटा मेरे सामने है, और जो बात इसमें लिखी गई है कि जो 500 मार्क्स जो दिए हैं लव, उसमें लिखा आया बिना शर्त प्रेम ब्रह्मा कुमारीज का अंतिम अंतिम प्रेम इसी लेवल के करीब है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर आध्यात्मिकता आ जाती है जीवन के अंदर, वहाँ पर हर चीज संभव हो जाता है। तो चैलेंजेस तो आपने रखी, लेकिन साथ में आपने उसका सॉल्यूशन भी बता ही दिया है। और हम आपके विचार को बहुत आपके विचार से बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, परंतु समय की सीमा के अनुरूप हम इसको यहाँ पर ही विराम देना होगा आपी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोबारा। अभी ये विचार सबके मन में चल रहा है, राइट? और चैलेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। आप अपने घर को आप सामने रखते हैं, अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को, तो वो चैलेंजेस ही बड़ा बड़ा दिखाई देता है। लेकिन स्थान यहाँ पर बैठे, हालांकि नई दिल्ली में बैठे, लेकिन स्थान ज्ञान सरोवर के हॉल के अंदर है, तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं। तो इसको और आगे बढ़ाते हुए, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये बात तो सत्य है ही, लेकिन इसमें मेहनत जरूर है। तो अभी हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में फैमिली हेल्थ स्टेट मिनिस्टर के रूप में सिस्टर पारुल बैठे हैं। आपसे ये प्रश्न है कि क्या आर्ट माना अवेयरनेस रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आधुनिक परिवारों में पीढ़ियों के बीच बढ़ते दूरियों को कम करने में सहायक हो सकते हैं? कैन आर्ट माना अवेयरनेस रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प ब्रिज द जेनरेशन गैप इन मॉडर्न फैमिलीज? तो इस पर आप अपना विचार अवश्य दें। आपका समय शुरू होता है अब।
आदरणीय अध्यक्ष महोदया, सम्मानित सांसदगण एवं उपस्थित सभी महानुभाव, ये आज का जो विषय है सिर्फ परिवार के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व के भविष्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है। और आज के इस आधुनिक समय में, आधुनिक युग में, आधुनिक चीजें तो दिन प्रतिदिन बहुत ही तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसी तीव्र गति से परिवारों के बीच, जैसे परिवार के अंदर दादा दादी, माता पिता और बच्चों के बीच जो गैप बनती जा रही है संबंधों में, प्यार में, वो उसका कारण है कि हम इसके लिए, जैसे बताया, ARTये बहुत जरूरी है, अवेयरनेस रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस ये हमें खुद को पहले देखना पड़ेगा कि आज की जनरेशन में जो छोटे बच्चे हैं या न्यू पीढ़ी है, उनको उनके अपनी सोच क्या है और उनको उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी सिचुएशंस क्या है, अगर उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं और उस समझ करके फिर उनके साथ व्यवहार में आते हैं, तो हमारा संवाद बना रहता है, उनके प्रति हमारे संबंध अच्छे रहते हैं। और उसके साथ साथ हम रियलाइजेशन करें कि मुझे इनके साथ अच्छे से रहने के लिए या इस परिवार में सुख शांति खुशी बनाए रखना, ये मेरी जिम्मेवारी है, और उसके लिए मुझे क्या परिवर्तन करना है। और वो सोचने के साथ साथ अगर हम स्वयं में ट्रांसफर करते हैं, अपने संस्कारों का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और फिर अपने को बदल करके हम बड़ों को सम्मान के साथ और छोटे के साथ प्यार से व्यवहार करते हैं, उनकी कुछ गलतियां भी होती है उसको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, तो परिवार में वो सुख शांति बनी रहती है, आपस में रिस्पेक्ट और आनंद खुशी बना रहता है। और इसके कारण जो पीढ़ियों में गैप है, वो जनरेशन गैप कम होती जाती है। और इसीलिए हम यही कहते हैं कि स्व परिवर्तन से ही परिवार में परिवर्तन आएगा, और जब परिवार परिवर्तित होता है तब समाज और विश्व परिवर्तन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर ईंटों से नहीं लेकिन संस्कारों से बनता है, और रिश्ते खून से नहीं हमारे स्वभाव से बनते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में ये कहना चाहूंगी कि राजयोग मेडिटेशन हमें स्वयं को परिवर्तन करने में बहुत ही मदद रूप बनता है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद पारुल बहन, आपके सुंदर मधुर बोल और आपके सारगर्भित जो विचार आपने रखा, आप हम सबके दिल को छूने वाली बात आपने रखी है बहुत ही सारगर्भित रूप से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं हमारे परेश जी जो कि गुजरात कॉन्स्टिट्यूट के रूप को प्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सल पीस फोरम एमपी, आपसे मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप अपना विचार रखें। जो पारुल बहन ने बताया बहुत सुंदर तरीके से, जैसे बहरे बोलती है तो सचमुच में लगता है कि अभी तो हो ही गया है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में जब हम आते हैं तो क्या जेनरेशन गैप अभी भी है, क्या वो गैप ब्रिज हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो चैलेंजेस सबके समक्ष आप अपना रखेंगे। आपका समय शुरू होता है अब।
नमस्कार, मैं
आपसे अनुरोध है कि आप खड़े होकर,
आदरणीय महोदय से विनती करूंगा कि मुझे बैठ के बात करने का मौका दिया जाए। थैंक यू। ईआरटी पे बहुत काम हो रहा है, आप लोगों ने सुन लिया, तो मेरा सवाल है, कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि इतना काम हो रहा है फिर भी ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं? ओल्ड एज होम फुल बुकिंग में चलता है, वेटिंग लिस्ट होता है, वहां घर के सीनियर सिटीजन लोग ओल्ड एज होम में अपने दिन बिताते हैं, बच्चे हैं जो गलती करते हैं तो उसका पापा मम्मी उसको गुस्सा करते हैं कि भाई ऐसी गलती मत करो, मगर वो सॉरी भी नहीं बोलता है। उनका दादा दादी नाना नानी बच्चों को समझाते हैं प्रेम से, बेटा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वो नहीं समझता है, ऊपर से आर्गुमेंट करता है। पहले के टाइम में 50-100 लोग का फैमिली एक साथ में रहा करता था, अब चार लोग भी साथ में नहीं रहते हैं, इवन के पति पत्नी भी साथ में रहते हैं तो कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है, आप मुझे सम्मान दो मैं तुम्हें समय दूंगा, तो ये सब कंडीशन पे सब चल रहा है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो सीधा डिवोर्स में मैटर चली जाती है, फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के केस की फाइल का ढेर लगा है, कहीं भी जाओ, ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूं। घर में बड़े बुजुर्गों की कोई राय ली नहीं जाती है, शुभ प्रसंग हो अशुभ प्रसंग हो, अगर घर में कोई मामला बन गया है तो घर के बड़े बुजुर्ग है कोई पूछता ही नहीं उनको, अपने आप वो लोग डिसीजन ले लेते आगे चल जाते हैं, घर वाले को पता नहीं होता है, घर के बुजुर्गों को बाहर से पता चलता है कि आपके घर में ये हो रहा है, ये सब परिस्थिति हो रही है। और ऐसे में रिश्तों में इतनी बढ़ती दूरियां में आपका एआरटी विफल हो रहा है मेरे हिसाब से, तो फैमिली भावनात्मक तो कोई बात है ही नहीं, किसी में लगाव नहीं है, किसी को एक दूसरे के लिए कोई भावना ही नहीं है, ये जनरेशन गैप क्यों हो रहा है इसके बारे में हमें मिलजुल के सोचना चाहिए। अभी इसके पर हम आए नहीं है, पति पत्नी का मोबाइल उसका पासवर्ड एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, पासवर्ड भी पर्सनल रहता है, वो ये फैमिली लाइफ हम सबकी हो गई है। अमीर बेटों के माता पिता ओल्ड एज होम में रहते हैं, क्यों? उसके घर में अल्सेशन कुत्ता पल रहा है मगर माता पिता ओल्ड एज होम में है। पति पत्नी के बीच में ये सब कंडीशन चलती है, अरे भाई भाई की नहीं बनती है, भाई बहन में नहीं बनती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम इसके ऊपर बहुत गहन सोचना पड़ेगा। ये वास्तविक परिस्थिति है, आप जनता से भी पूछ लिया, मैंने जो कहा कोई गलती है, कोई गलत बात है इसमें, तो फिर आप बोल रहे इतना काम हो रहा है, कहाँ है काम। ओके,
बहुत बहुत धन्यवाद परेश जी, आपने सचमुच में बहुत प्रैक्टिकल बात कही है, ये जेनरेशन की बात नहीं है, जो सेम जेनरेशन के अंदर भी आज मन भेद है और भाव भेद है, तो इसलिए एक दूसरे को पासवर्ड भी नहीं शेयर करते, हाफ पार्टनर जिसको कहा जाता है उसका उसके भावों को भी नहीं जानते हैं, घर में कुत्ता बिल्ली पेट्स के रूप में पल रहे हैं लेकिन माता पिता बुरे घर में है। तो ये न केवल जनरेशन गैप है परंतु सेम जनरेशन में भी गैप्स होता जा रहा है, तो क्या ये इसमें क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या अवेयरनेस रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कितना पॉसिबिलिटीज हैं, ये हम आज के चर्चा है और हम सुनना चाहेंगे स्पीकर साहब से भी और डिप्टी स्पीकर साहब से भी। लेकिन उससे पूर्व हमने पब्लिक के को रिप्रेजेंट करते हुए हम बुलाना चाहते हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी को, जो आप एस एन एनालिटिक रूप में आप यहाँ पर बैठे हुए एनालिसिस कर रहे थे आप सबके विचार को। आप एक डॉक्टर श्रीवास्तव जी, आप भारतीय संगीत जगत के प्रतिष्ठित गायिका है, लेखिका है और प्रेरणादायक वक्ता भी है। आपने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में आपने प्रस्तुति दी है और आप टॉप ए ग्रेड कलाकार रहे हैं और आपने अपने गायक कलाकार से बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं और साथ ही साथ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के आप आउटस्टैंडिंग कैटेगरी आर्टिस्ट हैं। 2025 में आपने भारतीय संस्कृति राजदूत कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के रूप में पोर्ट ऑफ स्पेन तथा सेंट लुसिया में भारत का प्रतिनिधि करने का गौरव प्राप्त किया है। आप बहुत ही हमारे बीच में बहुत ही नम्रचित होकर के निमित भाव से यहाँ बैठे हैं। आपसे अनुरोध करते हैं आप मंच पर आए और जो कुछ भी आपने एनालिसिस किया, हमारे स्पीकर्स को सुना, हमारे मिनिस्टर्स को सुने, हमारे एमपीज को सुने, वो 3 मिनट में आप उसके एनालिसिस आप सबके समक्ष बताएं। आदरणीय डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी।
हाँ जी, ओम शांति। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और मिनिस्टर, सभी सम्माननीय सदस्यों से आज्ञा लेकर अपनी बात रखने की कोशिश करती हूँ। आज के जो ये चर्चा है, जो ये पार्लियामेंट बिठाई है, ये विषय के लिए मैं सबको साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, क्योंकि ये आज की जरूरत है और अभी हमें जब ऐसा लग रहा है तो आने वाला दिन कैसा होगा, इसके सोच को रखते हुए आज जो यहाँ पार्लियामेंट ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हो रही है, इससे जो मंथन निकलेगा, ज्ञान सरोवर से हम कुछ मोती चुनकर जाएंगे, तो शायद कामना करते हैं कि शुरुआत कोशिश जो होगी, इसकी प्रथम सीढ़ी होती है, हम सफल होंगे। सभी को सुना मैंने तो ये पाया कि आज जो गैप है उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, संवाद की कमी है। और एक दूसरे पर जो हमें विश्वास था, निष्ठा था, वो कहीं डगमगा गई है। तभी तो पासवर्ड सबके अलग होते हैं। और अपने ईगो को शांत करने की कला है कि हमने पेट्स रखा है, उसके हम सम्मान करेंगे, बट जीते जागते अपने माता पिता, अपने भाई बहन का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा वो जानवर तो अनबोलता है ना, वो आपको कुछ बोलेगा नहीं। हमें आप कुछ कहेंगे तो हम शायद कुछ कह दें आपको, जो बात आपको लग जाए, जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। आज के बच्चों को अगर आप कुछ कहिए तो कहते, अरे क्या वही तुम बोल रही हो, फिर से लेक्चर दे रही हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं उनको लेक्चर नहीं चाहिए। तो उनका कसूर उतना नहीं है जितना हमारा है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि आप अपने लेखक स्वयं हैं, अच्छा लिखें बुरा लिखें। तो हम जो कर रहे हैं वही हमारे सामने है। हमने इनको कंबाइंड फैमिली दिखाया नहीं, वो कल्चर सिखाया नहीं, तो वो कैसे जानेंगे कि दादा दादी को कैसे झुक के प्रणाम करना है। फिर दादा भी उठा के आपको गोद में उठा के उतने ही प्यार से दादी प्यार करती है, दादी कहानियां सुनाती है, जानते अजाने आपको कुछ न कुछ उन कहानियों के माध्यम से नरिश करती है, सिखा जाती है। तो आज ये मिसिंग है। अभी मेरी एक किताब आ रही है जिसको लोरी पे मैंने लिखा है कि आज लोरी भी माँ नहीं सुनाती तो बच्चे को नींद भी उतनी सुहानी नहीं आती है, बड़े बुजुर्ग नींद की गोलियां खाकर सो रहे हैं। तो ये सब हमने ही तो दिया है। तो बाबा ने कहा कि ये आपका दायित्व है, आप इस पे चिंतन और मंथन करें, इससे जो मोती निकले वो आप दें लोगों को। सबसे पहला मोती क्या है कि आप आपस में संवाद करें। एक दूसरे पर विश्वास करें। प्यार का रंग कोई गोरा नहीं, काला नहीं, उसमें बहुत सारे रंग हैं। अधिकार भाव है, त्याग है, आस्था है, समर्पण है। तभी तो राम वनवास चले गए थे, वरना वो कहते कि मैं नहीं जाऊंगा। और माता कौशल्या ने क्या कहा कि अगर तुम्हारी माँ ने कहा होता तो मैं जाके कहती कि नहीं जाएगा, पिता ने कहा है इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तो इस गुणों को साधने की जरूरत है, अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। आपकी ये मुख से निकले आवाज दिल के गहराई से मुख तक आया है, लेकिन वो दिल में जो आया है वो पब्लिक के आवाज है। और ये सचमुच वही आपने बोला है कि जब हम खुद को रियलाइज करेंगे, खुद को सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो ये होगा। हम डीप रूटेड नहीं है, परंतु ऊपर ऊपर के सुपरफिशियल बातों पर रह करके हम सारा समाज को देख रहे, फैमिली को देख रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः। और अभी मैं अनुरोध, हाँ, इससे पूर्व हम सभी अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड एमपीज को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे। तीन ताली के ताल से ताल मिलाते हुए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। थैंक यू वेरी मच। और अभी हम जो इंतजार कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर साहब हमारे दयाल भाई जी, आप समराइज करेंगे कि जो कुछ भी आपने सुना है, क्या ये बिल पास हो सकते हैं और किस प्रकार से जो चैलेंजेस है वो किस प्रकार से हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। और आपसे थोड़ा सा इजाजत चाहते हैं कि अगर समय की सीमा को देखते हुए 10 मिनट में आप अपने सारगर्भित विचारों को हमारे समक्ष रखें। आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब,
ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई रिस्पेक्टेड फेलो स्पीकर्स, मंजा सिंह, सभी हमारे साथीगण को मेरा प्रणाम। सभा में बैठे सभी भाई बहनों को भी मेरा प्रणाम। अब इसका आंसर मैं थोड़ा सा अपने अनुभव से मैं सोचता हूं, मैं बताऊं तो शायद उसका सार आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो आपके सामने खड़ा है वो पहले ऐसा नहीं था। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, साइंस का स्टूडेंट था, मेडिकल रेप था, और मेरा लाइफस्टाइल टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्नाइज तरीके का रहा। जब मैंने जॉब शुरू किया, एमआर लोग उन दिनों में शराब शुरू पीते थे, पार्टी वार्टी होती थी, कंपनियों की भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती थी 5-star होटलों के अंदर, तो यानी समझ गए सब कुछ, शराब वराब, हाथ में सिगरेट, और बड़े अपने आप को हीरो समझते थे। अच्छा, ड्रामा भी मैं करता था, ड्रामा इंचार्ज था कॉलेज में। सब मिला के एक प्रकार का माइंड में जुनून था। फिल्म से बहुत अट्रैक्टेड था शुरू से ही, क्योंकि ड्रामा इंटरनेशनल ड्रामा कंपटीशन तक भी हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। अब उसके बाद में जो आप लोग कहते हैं ना कि सडन ब्रेक, सडन चेंज, यू टर्न, अब इस ऐसे करते करते मैं दुबई पहुंचा। दुबई में यूनिलीवर में जॉब करता था, वन ऑफ द टॉप कंसर्न ऑफ द वर्ल्ड, और हम लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, 6 रिप्रेजेंटेटिव थे पूरी यूएई में, और 6 के इंडियंस थे, 2 मुस्लिम थे, 1 क्रिश्चियन था। हम लोग फैमिलीज थी हम लोगों की, बड़ी एक दूसरे के साथ में गुड फ्रेंड। अब उसके बाद में मेरा एक फ्रेंड मुझे ब्रह्मा कुमारी इसके संस्था में लेके गया, बड़े यार एक बहुत अच्छी संस्था है, उसका नाम है ब्रह्मा कुमारी। क्या ब्रह्मा कुमारी? फालतू कुमारी उमारी के लफड़े में मत डाल, एक कुमारी घर में आ गई है भाई, नहीं बहुत है वाइफ के लिए, मजाक में। नहीं 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 ये लोग ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, ऐसे वैसे हैं। अब दोस्त तो दोस्त होता है, उसकी बात का फर्क नहीं पड़ा। दो दिन के बाद उसकी वाइफ ने बोला, महंत नाम है सरनेम, अरे महंत उधर ऐसे बहुत है, आई से गए हम लोग सेंटर में। तो सेंटर में जाते ही शाम का समय था, योग का समय था, गुलाबी कलर था, रेड लाइट जिसको हम लोग कहते हैं। चार भाई लोग योग कर रहे थे, हम दिन भर के काम किए हुए थके हुए थे, बैठा अच्छा लगा, बड़ी शांति लगी। फिर बहन जी ने कहा कोर्स करो। मैं योगा करता था, ऑल योगा फिजिकल एक्सरसाइजेस। तो बोले ये राजयोग का कोर्स करो। नहीं नहीं बहन जी मुझे योग आता है, हाँ मैं सब आसन करता हूँ। बोले आसन वाला योग नहीं है, दूसरा योग है। इतना होने के बाद में भी फिर मैंने कोर्स किया, नहीं सिर्फ आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय। तो मैं आप सबको कहता हूं वो टर्निंग पॉइंट है। एक तो आत्मा का इतना डिटेल बताते हैं यहां पर कि किसी भी शास्त्र में किसी भी बुक में नहीं है कि आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है और तीनों के एक्टिविटीज क्या है। दूसरा परमात्मा का परिचय, कितने सारे परमात्मा हैं, कितने सारे देवता हैं दुनिया में, कितनों की पूजा करते हैं। मुझे बचपन से ही देवी देवताओं अच्छे लगते थे, लेकिन वो भगवान लोग एक ही कहते हैं और अनेक, ये कन्फ्यूजन था, वो क्लियर यहाँ पर हुआ। एंड गॉड के जो एट्रीब्यूट्स है, जो चित्र है आपने सेकंड लेसन में यहाँ देखा होगा, तो मैं को लगा ये संस्था बहुत अच्छा है। उसके बाद में मैं परिवार सहित यहाँ पर आया, और जैसे भाई साहब ने कहा कि साइंटिफिकली जब तक हम इस ज्ञान को प्रूव नहीं करेंगे तब तक आजकल के बच्चे मानते नहीं है। ये ज्ञान साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि मेरा माइंड भी साइंटिफिक था। साइंस की बोलती है, अरे साइंस यही बोलता है, लेकिन साइंस अंदाज लगाता है। इतने सारे वो ट्री को काटने के बाद में इतने रिंग आने के बाद में, यानी इसकी उम्र इतनी हुई होगी, कंफर्म नहीं है। ये खोदा गया तो उसमें से इतने स्कल निकले, वो स्कल के देखकर उसको देखकर इतने साल का हुआ होगा, कंफर्म नहीं है। यहां कंफर्म है 1250 साल की एक युग होता है, 5000 साल की साइकिल होती है, बाप बताता है, कंफर्म है। दूसरा बोल कौन रहा है, ये जब हमको विश्वास हो जाता है बोल कौन रहा है, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड बोल रही है, तो उसके आगे सारे साइंस सारे साइंटिस्ट नीचे आ जाते हैं, ही इज द हाईएस्ट टॉप। तो वो मेरे माइंड को कन्विंस हुआ। आप अपने बच्चों को बोलो कि आप किसकी बात सुन रहे हो। जब हम लोग ज्ञान में नए नए आए, धड़ से सब छूट गया, लिकर छूट गया, सब छूट गया, सब फ्रेंड्स नाराज हो गए, बोले क्या तू पार्टी में नहीं आ रहा है, ऐसा वैसा है। मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला, मैंने कहा देखो मैं जहां जाता हूं वहां तुम लोग आओ एक दिन एक घंटे के लिए, इफ दैट वे इज रॉन्ग आई विल फॉलो यू, and if this way is right you come to me, challenge open। उसमें से एक दोस्त था रवि चेरियन, क्रिश्चियन था, हम लोग स्कूल में साथ में थे, कॉलेज में साथ में रहे, जॉब भी एक ही कंपनी में किया, एलिम्बिक में एमआर थे हम लोग। उसको भी मैंने दुबई बुलाया था तो वो लोग आए, मैंने दीदी से अपॉइंटमेंट लेके सबका कोर्स कराया, वो लोग मान गए, छेव की छेव मान गए, बोले राइट। इनका क्या है यार, ये लाइफ है। हम लोग मालूम है शराब खराब है लिवर के लिए, इस्तेमाल फिर भी पिए जा रहे हैं, मालूम है सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ फिर भी फूके जा रहे हैं। वी आर ह्यूमन बींग और एनिमल, एनिमल को पढ़ना नहीं आता है, वो बिना पढ़े कुछ भी खा लेते हैं। हम लोग जानबूझकर ये सब जहर खा रहे हैं, उनकी वाइफ भी साथ में थी, वो सब मान गए। तो हम लोगों ने भी, हम माता पिता हैं, हम लोगों ने भी बच्चों से डरना नहीं है, हम लोगों ने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये बच्चे बड़े होके मुझे साथ देंगे, मेरे साथ में, अरे जा, आई एम सफिशियंट। बच्चों को रिस्पेक्ट देना है, बच्चों को प्यार देना है, लेकिन बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। मेरे पास अभी भी कुछ लोग आते हैं, कहते हैं हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, बच्चों के नाम से करें। मैंने कहा देखो, पहले अपना खुद ने और आपकी जो अर्धांगिनी है उसके लिए पहले रिजर्व करके रखो, कल का कुछ भरोसा नहीं है। जब मैं समर्पित हुआ तो मैं दादी से मिला, समर्पित तो नहीं होना चाहता था, प्रैक्टिकली हम बाबा मिलन में एवरी ईयर आते थे, तो 93 में हम आए, 92 में दादी जानकी से मेरी बातचीत हुई दुबई में, और दादी ने को मैंने कहा दादी यहां पर दो भाई अफ्रीका के रहते हैं, कृष्णकांत भाई और किशोर भाई, उनके जैसे दादी हम घर लेना चाहते हैं और पांडा भवन में सेवा करेंगे। मैं 16 साल हो गया दादी, मुझे दुबई में पेट भर गया, मेरे पास पैसे कमाना नहीं है। तो दादी जानकी बड़ी दादी बैठे थे, दादी ने कुछ सेकंड सोचा, आपको बाहर रहना नहीं है, है? दादी तो कहाँ रहेंगे? दादी ने कहा यहाँ रहेंगे, पांडा भवन में, मधुबन में, दादी के ऑफिस में कमरे में बैठ के बात हो रही है। तो मैंने कहा लेकिन दादी बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, छोटी वाली जो ज्ञान में आई तो 3 की थी, अभी 9 की हो गई थी जब हम लोग समर्पित हो रहे हैं तब। तो दादी ने कहा बच्ची को मैंने इंतजाम कर दिया, हम ब्रह्म कुमारी का हॉस्टल है, हॉस्टल में पढ़ेंगी बच्चे दोनों इंदौर में। तो बच्चों का इंतजाम हो गया, युगल पहले से मेंटली तैयार थी समर्पण के लिए। तो दादी ने कहा कि ये ज्ञान सरोवर बनने वाला है, नहीं ज्ञान सरोवर नहीं, ये साल गांव कहते थे, ये बनने वाला है, आप बाबा को आपकी वहां जरूरत है। दिस वॉज द सेंटेंस, उनको वहां हो, बाबा को मेरी जरूरत है, यहां होने वाला है, फिर क्या बात है। तो इस तरीके से मैं 6-7 महीने यहां पर कंस्ट्रक्शन में रहा, उसके बाद में हम लोगों ने अपना बिजनेस था मेरा दुबई में, यूनिलीवर छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया था, वो सब वाइंडेड करके, तो फिर हम लोग यहां आ गए। तो माइंड हमारा तब कंफर्म होता है जब हम लोग स्टेबिलिटी में रहते हैं। फिर जब मैं आया वहां का सब सामान लेके ट्रक में भर के दादी के सामने रखा, तो मैंने दादी को बताया दादी इतना है, तो दादी ने ऐसा नहीं बोला सब समर्पित कर दो पैसा, दादी ने कहा अपने नाम से और कोई दादा कोई किसी के नाम से बैंक में रखो। लिया नहीं संस्था में, वो मेरे को दूसरा झटका लगा, मैंने कहा कमाल है यह संस्था वाले, हम दे रहे हैं फिर भी नहीं ले रहे हैं। बोले नहीं सब FD में रखो, दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों की परवरिश आपको करनी है। तो मैंने कहा दादी ये दो बच्चे भी आप ही के यज्ञ से पलेंगे, हम तो छुट्टी पाना चाहते थे। तो दादी ने कहा नहीं, आपकी रचना है, आपको उसको संभालना है, अनदर लेसन। यज्ञ का एक एक बात देखो कि तुम्हारी रचना है, तुमको संभालना है। तो दादी ने कहा यज्ञ में कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने सब बैंक में रखा, उसके वो ब्याज से बच्चे पलते रहे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम लोग जो यहां पर बैठे हैं, सबसे पहले हम अपने माइंड को कन्विंस करें कि ये रास्ता जो परमपिता परमात्मा बता रहा है हमको, ये ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। जब तक हम स्टैंड नहीं करेंगे अपने ओन थॉट्स के ऊपर, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और हम बच्चों के सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा, अपने घर का वातावरण, हमको दादी जानकी ने सिखाया, फॉरेन में जितने भी बच्चे हैं यानी जितने भी हम लोग स्टूडेंट हैं, सबके घर में एक मेडिटेशन रूम होता है या मेडिटेशन कॉर्नर होता है। अगर आपका घर इतना बड़ा नहीं है तो आप घर का एक कॉर्नर ले लो, वहां पे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का ट्रांसलेट हो छोटा सा, और रोज हस्बैंड वाइफ बैठ के एक साथ मेडिटेशन करो, जो समय है मेडिटेशन का। तो घर का वातावरण बदलता है, हमारी धारणाएं चेंज होती है, हम वेजिटेरियन पे आ जाते हैं। कितनी फैमिलीज है, आप जो ये सफेद साड़ी वाली बहनों को देखते हैं ना, ये थोड़ी सी है, लेकिन मेजॉरिटी जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां सारे वर्ल्ड के अंदर, दे आर ऑल फैमिली पीपल। एक सेंटर होता है उसमें मुश्किल से चार बहनें होती है और 100 स्टूडेंट होते हैं। दुबई में आप जाके देखो, रोज सुबह 4 बजे 60-70-80 स्टूडेंट अपने, हम लोग छोटे बच्चों को लेके आते थे सेंटरों में, सेंटर में लाके सुला देते थे उनको नीचे और हम लोग क्लास करते थे। तो जब हमको मन में लगन है तब हम रास्ते कोई भी निकाल लेते हैं। एंड दिस नॉलेज इज वेरी मच साइंटिफिकली प्रूव्ड। अगर आप लोगों को स्पार्क करके है हमारा ये, इसके सामने में ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 13 में आप जाइए, स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, वहां पे साइंटिफिकली 5000 साल की साइकिल को और इस ज्ञान को साइंटिफिकली समझाया गया है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के द्वारा आत्मा को समझाया गया है। कितने फॉरेन के साइंटिस्ट है जिन्होंने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से सोल के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया हुआ है, हमारे रिबर्थ को प्रूव किया हुआ है कि हम लोग बार बार जन्म लेते हैं और ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग ही लगते हैं या एनिमल या कोई दूसरे से में बनती है। एवरीथिंग इज प्रूवन बाय साइंस। तो आप लोग जरूर जाइए और फिर कॉन्टेक्ट रखिए, अगर कुछ भी आप लोगों को सस्टेन करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
ओम शांति।
आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत सुंदर तरीके से बताया, जो दूसरों के लिए चैलेंजेस है वो उस चैलेंजेस को आपने स्वयं पार किया है और कैसे समर्पण बुद्धि से, जहां पर सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ रियलाइजेशन होता है वहां पर सरेंडर डेडिकेशन होता है, और भाई साहब ने स्वयं ही कहा जहां पर विल है वहां पर सब कुछ संभव होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर आधा चैलेंज तो जैसे कि क्लियर हो गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया है। तो अभी मैं अनुरोध करना चाहती हूं हमारे स्पीकर मैडम से, रिस्पेक्टेड स्पीकर से, कि जो कुछ भी आपने सुना है दीदी जी, जो भी चैलेंजेस आप भी बखूबी पता है कि दुनिया में क्या हाल है, फैमिली का क्या हाल हो रहा है, आजकल मॉडर्नाइज कल्चर चल रहा है, लेकिन इन सब के चलते हुए क्या सॉल्यूशन है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, वे सब आप हमारे समक्ष साझा करेंगे। आदरणीय चंद्रिका देवी जी।
ओम शांति। मैं समझती हूँ कब से बैठे हैं ना, थोड़ा खड़े हो जाए और अपने हाथ पांव हिला ले, थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, क्योंकि शरीर के प्रति ध्यान रखना ये भी हमारा एक बहुत परम कर्तव्य है, सबसे पहला मूल्य ये है। ऊपर करो नीचे करो पीछे करो, दिल से हाथ लगाओ और अपना जहां खड़े हो वहां कदम दाल कर लो, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं 50-45 मिनट से ज्यादा एक सीट पर बैठना नहीं चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं खुद के लिए परिवार के लिए अगर हम लाइफ में अप्लाई करेंगे तो बहुत सक्सेस होंगे। पर दयाल भाई जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए और उन्होंने जहां से बात छोड़ी है वहां से मैं आगे चलूंगी। बैठ जाइए। पार्लियामेंट में मंचस्थ सभी महानुभाव और सभा में उपस्थित अति प्रिय जनतागण, ये स्पिरिचुअल पार्लियामेंट रखी गई है वो मुझे बहुत पसंद आई है और उसके लिए आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखो मित्रों, जीवन के अंदर हम कोई भी छोटा सा भी काम करते हैं तो उसमें थ्री एस्पेक्ट होते हैं, तीन पहलू होते हैं, इंटेंशन, एटीट्यूड एंड अप्रोच। आप जिस और कदम उठा रहे हो तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका हेतु क्या है, आप लक्ष्य क्या लेके चल रहे हो, उस लक्ष्य के लिए आपका अप्रोच क्या है, एटीट्यूड क्या है, मनोवलन क्या है, अप्रोच क्या है। मैंने एक सिंपल इंटेंशन रखा कि मुझे एक बहुत ही अच्छे कार्य के लिए प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, ये मेरा इंटेंशन है। अब उसके लिए मेरा एटीट्यूड क्या रहेगा कि मैं उस बात में किस तरह सफल बनूं, वो रास्ते सारे प्लान करूंगी और उसके लिए मुझे किस अप्रोच से जाना चाहिए वो अप्रोच बनाऊंगी। हमने जो पारिवारिक संवादिता का ये जो प्रोजेक्ट लिया है वो बहुत बड़ी ऊंची शुभ आशा के साथ लिया है, क्योंकि व्यक्ति से, अनेक व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवारों से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, अनेक राष्ट्रों से देश और विश्व बनता है। और आज हम सारे विश्व की सेवा करने चाहते हैं तो उस सेवा का माध्यम कहां से शुरुआत होता है, वो बात अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर दयाल भाई जी ने हमारे समक्ष रखा और इस बात को प्रमाण के रूप में बताया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को विश्व सेवा के प्रति कैसे लगाया, क्योंकि उनका इंटेंशन था, उनको एक क्लियर इंटेंशन मिला। अब हम चाहते हैं कि समाज के अंदर ये संभव हो, तो जब किसी बात को हम चाहते हैं कि ये करना है और ये करना चाहिए, मैं सभी को सुन रही थी और सुनते हुए मुझे थोड़ा रहम भी आ रही थी, क्योंकि आज सारे संसार में ये है, लोग बहुत मूंझे हुए हैं और एक एक घर में एक एक बच्चे, एक एक बेटियों की जो हालत है और उसको देख करके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी सबकी जो परिस्थितियां हैं, मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं और उसका रास्ता सही तरह से मुझे स्ट्रेट दिखाई पड़ रहा है, तब इस कदम को उठा करके हम इस प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़े हैं। अब उसका रास्ता एक ही है, पॉजिटिव अप्रोच। कुछ भी हो जाए ये संभव है, होना ही है, करना ही है, ये पॉजिटिव अप्रोच। ताली बजाइए। इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, मैं अपना मिसाल देती हूं, मैं इस संस्था में 18 साल की उम्र में आई। मेरे आने का कारण एक ही था, क्योंकि मेरे में बहुत गुस्सा था, दुर्वासा ऋषि से ज्यादा। मैं अपने पर भी गुस्सा करती थी, परंतु हर दिन ये प्रयास होता था कि भगवान कोई मेरे गुस्से को छुड़ावे और जो मेरा गुस्सा छुड़ाएगा मैं उसको अपनी जीवन दे दूंगा। और वो भगवान ही निकला, इस संस्था से अप्रोच हुआ। पहला लेसन, मैं एक आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। मुझे कितनी मिनट बोलना है वो आपने नहीं सुनाया, सुने ना मैं? मुझे कितनी मिनट बोलना है आपने नहीं सुन? हाँ, अभी से 10 मिनट? हाँ नहीं, ठीक है, मुझे बताना, पूछना मेरी फर्ज है। और मेरे में जबरदस्त परिवर्तन आया, मेरे पिताजी प्रसन्न हो गए, माताजी प्रसन्न हो गए, परिवार में सब मेरे से प्रसन्न हो गए, क्योंकि मेरा क्रोध पिघल गया। आते ही एक मास में मैंने ब्रह्मा बाबा के आगे एप्लीकेशन डाली कि अब मुझे इस संस्था में समर्पित होना है, लेकिन मेरे पिताजी नहीं मानते थे, परिवार में भाई लोग कोई भी नहीं मानते थे। ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा करनी होगी, जब तुम तुम्हारे परिवार की सेवा करेगी, वो तुम्हें खुशी से छुट्टी दे, तब बाबा तुम्हें अलाउ करेगा कि अभी तुम समर्पण हो सकते हो। ये छोटी चैलेंज थी, आप बताइए, बहुत बड़ी चैलेंज थी। मेरे बड़े भाई, मुझे बहुत प्यार उनसे था, उनको भी हमारे से प्यार था, तीन साल तक वो पुणे में जॉब करते थे, अहमदाबाद आते थे, लेकिन हमारा मुंह देखना बंद कर दिया, घर में आना बंद कर दिया। जब तक मेरी बहने ब्रह्मा कुमारी संस्था नहीं छोड़ेगी, तब तक मैं मुंह नहीं देखूंगा। अनायास एक बार ऐसा हुआ कि वो बॉम्बे से अहमदाबाद आ रहे थे, ट्रेन में कुछ ब्रह्मा कुमारी वाले सदस्य थे, उन्होंने जिज्ञासावश पूछा कि आप ब्रह्मा कुमारी वाले हैं? बोला हाँ। बोला हमारी संस्था में मेरी दो बहनें हैं, क्या नाम है? चंद्रिका बहन और वेदांती बहन। हाँ, वो आपकी बहनें हैं क्या? बोला हाँ। अरे हमारी संस्था में तो वो बहुत आगे हैं और बहुत नामना छोटी उम्र में उन्होंने प्राप्त की है, हम क्या सुनाए आपके बहनों के बारे में? अब उन्होंने जो सुनाया होगा। वो उस वाली ट्रेन से सीधा घर आया, घर में आके पिताजी के पांव में पड़ा और कहा, अब मैं आपके मार्ग के बीच में नहीं आऊंगा और मैं बहनों के मार्ग के बीच में भी नहीं आऊंगा, अब मैं स्वेच्छा से उन्हों को जो करना है करने की छुट्टी देता हूं। चैलेंजेस थी, पॉजिटिव अप्रोच रखो, होना ही है, कहां भी क्वेश्चन में नहीं जाओ, रुको नहीं, नेगेटिव नहीं बनो। और परिवार के प्रति इन चार मूल्यों को एकदम अपने में लाइव करो। नंबर 1, लव, सच्चे दिल से प्यार करो, जो हैं जैसे हैं मेरे हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं, आप उन्हों के प्रति प्यार जताएं। दूसरा, फेथ रखें, उन्हों में विश्वास रखें। तीसरा, उन्हों के प्रति डेडिकेशन रखें, समर्पण भाव रखें, बिना स्वार्थ उन्हों के लिए जो करना पड़े आप कीजिए। और चौथा, रिस्पेक्ट दीजिए। अगर ये चार मूल्यों के द्वारा केवल फैमिली में नहीं, मित्रों के बीच, ऑफिस में सहकर्मचारियों के बीच, समाज में सहयोगियों के प्रति इन चार मूल्यों को अपने जीवन में लाइव रखा, तो आप सफल होने ही हो, क्योंकि उन मूल्यों में जबरदस्त ताकत है। और मनुष्य स्वभाव ये है कि वो पास्ट में ही रहता है, वो पास्ट की बातें और पास्ट की नेगेटिव बातें ही सोचता है। अगर हम पास्ट को पास्ट कर दे तो हमारे लिए फायदा है, लेकिन संबंधों में पास्ट में कोई कड़वाहट हुई है तो उनको बड़े दिल से माफ कर दे, भूल जाए, माफ कर दे, क्षमा कर दे और अपना व्यवहार सामने से नम्रता से बनाए। झुकना नम्रता है। तो कुछ हो गया है, कोई बात नहीं, हमारी गलती को हम खुद ही खुद डिक्लेयर कर दे और क्षमा मांग ले, तो क्षमा भाव और दूसरा स्वीकार भाव। अगर हमारी कोई गलती है तो उसे एक्सेप्ट कर ले कि हाँ सचमुच ये मेरी गलती थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरे से हो गया है। तो इन दो बातों को अपने जीवन में अगर हम अपनाएंगे तो मैं समझती हूं कि हमेशा संभव है। एक ब्रह्मा बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा विरोधियों के बीच, इतनी सब बहनों माताओं ने जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, उन्होंने पति का, सास का, ससुर का, बच्चों का विरोध सहन करके देश के लिए अपने आप को सफल बनाया। आज 50,000 कोई छोटी संख्या नहीं है। तो हमारे सामने ये सफल प्रयोग है। और इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरे दिल की आशाएं व्यक्त कर रही हूं कि इस प्रोजेक्ट को जो उठाया है जिस शुभ भावना से, ये देश और विदेश में और पूरे विश्व में अपना जलवा करके दिखाएगा और घर घर में मंदिर का दर्शन होगा। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्पीकर जी का। जी भाई,
सॉरी टू इंटरफियर, एक बात बताना भूल गया मैं। दीदी दीदी मेरा आवाज वैसे ही दमदार है क्योंकि दिन भर पार्टी समझाते रहता हूँ। एक सजेशन मैं देता हूँ, अपने अपने लाइफ की बात चल रही है तो ब्रह्मा बाबा की लाइफ हिस्ट्री पढ़िए, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, किताब का नाम लिख लीजिए, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, Part 1 and Part 2। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा है कि अगर ये किताब पढ़ के आपके जीवन में परिवर्तन ना आए ऐसे हो नहीं सकता। श्योर शॉट है, लिखने वाले जगदीश भाई हमारे सीनियर ब्रदर, और मैंने वो किताब पढ़ी इन द बिगिनिंग में और मैं नतमस्तक हो गया। किसकी कहानी पढ़ रहे हो तुम? सारी दुनिया कहती है कि गॉड कम्स, अरे गॉड आया है, खुद अपने मुंह से अपना परिचय दे रहा है और हम सोए पड़े हैं। वो किताब जगा देगी आपको। उसके ऊपर हमने पिक्चर ड्रामा भी बनाया था शिव अवतरण का। ओम शांति, बाकी बाद में।
बहुत बहुत धन्यवाद अयाल भाई जी का भी और दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ लीजिए आज का जो पार्लियामेंट है, जो बिल सबके सामने रखा गया वो पास हो गया है और जिन्होंने कहा देश विदेश में इस प्रोजेक्ट के द्वारा, इस बिल के द्वारा पूरा परिवर्तन होगा, फैमिली बहुत श्रेष्ठ बनेंगे। बस थोड़ा सा मुझे अपने अंदर झांकना है और जो झांकने का जो प्रोसेस है वो सफल होता है तो अपने आप परिवर्तन का मार्ग खुलता जाएगा। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को, लेकिन उससे पूर्व जो हमारे बीच में एमपी बैठे हुए हैं, वैसे तो बाबा के घर में आप बाबा के ही बच्चे हैं लेकिन ऐसे गेस्ट अभी आए हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बाबा का बच्चा बन करके आएंगे, तो उसके लिए सर्टिफिकेट, क्योंकि बच्चा का, बाबा का बच्चा बन करके आना ही है, उसके लिए सर्टिफिकेट आदरणीय दीदी के हाथों
आपको प्राप्त होगा। तो मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि सर्टिफिकेट आप ले आए प्रभु प्रसाद के साथ साथ, और दीदी के हस्त कमलों से हमारे जो बीच में बैठे हुए गेस्ट है आदरणीय धीरज कुमार जी, दीदी के हाथों से ये सर्टिफिकेट लेंगे। प्रीति चौहान जी, प्रीति चौधरी जी और भ्राता परेश भाटिया जी, और साथ ही साथ भ्राता मधुकर जी को भी दीदी और भाई साहब के हाथों से ये सर्टिफिकेट बाबा के घर में बने ये प्रसाद आप लेकर के जाए, और अगले बार आए तो पक्का बाबा का बच्चा बन करके अपने साथ गेस्ट को भी साथ में लेकर के आए, इसकी ये सर्टिफिकेट है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए सभी जनताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इस कार्यक्रम में जो बिल पास हुआ है उसका प्रैक्टिकल एक मॉडल के रूप में हमारे आर्ट एंड कल्चर के जो टीम है, आर्टिस्ट है, लाइफ मेंबर के रूप में यहाँ एक्टिवली पार्ट प्ले कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर स्किट तैयार किया है, वो स्किट हम देखेंगे। आप सभी मंच आसीन महानुभावों से अनुरोध है कि आप सभी नीचे सीट ग्रहण कर लें। एक मिनट, सभी आप नीचे, आप थोड़ा सा स्पेस देंगे दीदियों के लिए, भाईजियों के लिए, ताकि हाँ जी टोली का प्रसाद लेकर है, प्रसाद है, हाँ नीचे जाएंगे जी। मैं अरेंज करती हूँ हाँ श्रीवास्तव जी, सिलेजमेन आप आइए, दीदी के हाथों से ये प्रसाद और ये लीजिए। दीदी वो अरेंज कराती हूँ मैं, आइए दो मिनट रुकिए, हाँ दीदी के पास चाहिए। ताली बजाएंगे, और जब तक जो हमारे बाबा के बच्चे सेवाधारी हैं आप मंच का आइए सर्टिफिकेट, टोली भी आ गया है, सर्टिफिकेट है, शीतलबन तब तक आप चालू कर सकते, ताली बजाइए। थैंक यू वेरी मच शैलेश श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी बैठे रहिएगा, 5-7 मिनट का ही बहुत सुंदर स्किट तैयार किया है आर्ट एंड कल्चर टीम ने, आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये आर्ट ऑफ हार्मनी से हम अपने परिवार को बहुत सुंदर मधुर ताकि और ले जा सकते हैं। आप सभी बैठे रहिए, तब तक ये स्टेज फिर से रिसेट करेंगे। ओम शांति, जब तक ये स्टेज सजे किट शुरू हो, अनाउंसमेंट आप सुन लीजिएगा सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को 4 बजे से हमारा मेडिटेशन सत्र शुरू होगा, तो सभी इस किट के पश्चात भोजन के लिए जाएंगे, उसके बाद आप आराम करके 4 बजे बहुत सुंदर हमारा सत्र है, मेडिटेशन कैसे करना है, अपने मन को परमात्मा से कैसे जोड़ना है वो सत्र रहेगा, बहुत सुंदर युक्ति बताई जाएगी उस सत्र में, आप सभी मौजूद होंगे, और उस सत्र के पश्चात बहुत सुंदर पैनल होगा, उस पैनल में भी आप सभी मौजूद होंगे ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और अभी हम स्किट देखेंगे आर्ट ऑफ हार्मनी फॉर फैमिली लाइफस्टाइल, हार्मोनियस मेलोडियस फैमिली लाइफस्टाइल।